एक सत्य घटना से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये समय महात्मा बुद्ध का समय था। कौशल देश का एक राजा था और जिसके पास बुद्रेक नाम का एक महाशक्तिशाली महाबलवान हाथी था। यह हाथी इतना शक्तिशाली था कि जिस भी युद्ध में इसे ले जाया जाता था, राजा वो युद्ध जीत कर आता था। कितने ही भाले और कितने ही तीर यह हाथी सहज सहन कर लेता था। ऐसा शायद ही कोई युद्ध होगा जो राजा ने कभी हारा था। ऐसा पराक्रमी यह हाथी जिसे दूसरे कई राजा खरीदना चाहते थे। जब यह हाथी चिहाड़ लगाता था तो दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। इतना शक्तिशाली बलशाली यह हाथी था और उसने अपने राज्य की बहुत सेवा की और इस कारण ही राज्य के जितने लोग थे उन सब का वो चहेता था। एक समय आया जब हाथी बूढ़ा हो गया और राज्य में टहलते हुए एक बार एक कीचड़ में जाकर फंस गया। राजा ने बहुत सेवक भेजे उसे निकालने के लिए, परंतु हाथी न निकल पाया। हाथी अब दुर्बल था, निरीह था, शक्तिहीन था क्योंकि वृद्ध था। देश दूर से लोगों को बुलाया गया हाथी को निकालने के लिए, परंतु हाथी निकल ना पाया। सारा गांव सारा राज्य वहां एकत्र होता और देखता उस हाथी को। सभी उसके लिए प्रार्थना करते क्योंकि वो बहुत प्रिय हाथी था सबका। उसके मुख से बुद्धिमत्ता परिलक्षित होती थी। सारे प्रयत्न करने के बाद भी शाम तक जब हाथी नहीं निकला तो राजा को याद आई उस हाथी का वह पुराना महावत जो कि अब सेना निवृत्त हो चुका है, सेवा निवृत्त हो चुका है। और राजा ने कहा उसको बुलाओ, शायद वही कुछ कर सकेगा। परंतु ये जो पुराना महावत था वो तो अब तक बुद्ध का शिष्य बन चुका था। सुबह से शाम बुद्ध के प्रवचन सुनता, शिक्षाओं को ग्रहण करता। और महात्मा बुद्ध ने भी कभी अपने प्रवचनों में ये भी कहा था कि यह महावत और वह हाथी जन्म जन्म के साथी है, किस एक जन्म के ही नहीं। और वास्तव में इस जन्म में भी वह महावत और हाथी बचपन से साथ थे, युवा में साथ थे, हर युद्ध में साथ थे और निवृत्त भी साथ हुए थे। तो राजा को ख्याल आया कि क्यों ना उस महावत को बुलाया जाए, वही कुछ कर सकता है। वो महावत आया और हंसने लगा और उसने एक ऐसी चीज कर दी कि उसके होते ही हाथी जो कि फंसा हुआ था उस दुबन में, उस दलदल में, हाथी सहजता से बाहर निकल आया। उस महावत ने रणभेरी बजाई, उस महावत ने युद्ध के नगाड़े बजाए, और जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजे वो हाथी ये तो भूल ही गया कि मैं फंसा हुआ हूं, वो हाथी ये तो भूल ही गया कि मैं वृद्ध हूं, या वो हाथी ये भूल ही गया कि मैं कमजोर हूं, और त्वरा तीव्रता से बाहर निकल आया। और फिर वही गर्जना, फिर वही चिहाड़ जो कि राज्य के लोगों ने बहुत समय के बाद सुनी, और हर्षोन्माद। जब यह घटना घटी, महात्मा बुद्ध भी वहां आए थे अपने शिष्यों के साथ, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे भिक्षु, सीखो इस हाथी से। क्या सीखो? उन्होंने कहा, सीखो इस हाथी से, मैं भी कब से रणभेरी कर रहा हूं, कब तक तुम फंसे रहोगे संसार के दलदल में, मेरी इस आवाज को सुनो। क्या ये हाथी, क्या तुम इस हाथी से भी गए बीते हो? वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। भगवान की आवाज है, हम भी कहां फंसे हैं? पांडव शिव शक्ति की रणभेरी अब बजती है, रोज गीत सुनते हैं, शिव पिता को अब याद करो, मुक्तिधाम तुम्हें जाना है। भगवान रणभेरी कर रहा है और हमसे पूछ रहा है और हमसे कह रहा है कि कब तक तुम इस देहभान के कीचड़ में, दलदल में फंसे रहोगे। और वो हाथी भी कोई साधारण हाथी नहीं था, परम शक्तिशाली था, बलशाली था, बुद्धिमान था, परंतु फिर भी फंसा था। कहीं हमारी गति उस हाथी की तरह तो नहीं है? क्या देह भान के, क्या देह अभिमान के, क्या देह अहंकार के दलदल में हम भी तो फंसे नहीं है? आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने त्याग मूर्त बच्चों को, अपने त्याग स्वरूप बच्चों को, बाबा त्याग मूर्तियों को देख रहे हैं जिन्होंने सूक्ष्म त्याग किए हैं। ऐसा एक भी नहीं जिसने त्याग नहीं किया। चेक करो, बाबा ने कहा, स्वयं की चेकिंग करो। तो आज हम त्याग पर चर्चा करेंगे। पिछले संडे बाबा ने भाग्य पर चर्चा की थी और कहा था कि तुमने एक गुना त्याग और पदम गुना भाग्य पाया है। वो भाग्य की रेखा है, उसको बढ़ाओ। वो भाग्य का सितारा है, उसको चमकाओ। वो भाग्य प्रॉपर्टी है, उसकी संभाल करो और बढ़ाओ। वो भाग्य अधिकार है, उसे ले लो। संभालने का आधार धारण करो, बढ़ाने का आधार दिल से सेवा करो, तन मन धन से सबको एक जैसा वर्षा, एक बाप समान सब कुछ होते हुए भी भाग्य में नंबरवार थे, उसी तरह त्याग में भी नंबरवार है। तो आज त्याग की चर्चा करेंगे। त्याग की परिभाषा क्या कहा बाबा ने, बहुत ही गहरी है। त्याग की परिभाषा क्या है, त्याग क्या है, त्याग किसे कहा जाएगा, त्याग के क्या प्रकार है, त्याग करने की विधि क्या है, किस किस चीजों का त्याग करना है और त्याग करने से क्या होता है, क्या परिणाम है, क्या प्राप्ति है। त्याग करने में बाधाएं कौन सी है, त्याग करने की विधि क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की मुरली में है। तो सबसे पहला प्रश्न है त्याग की परिभाषा। त्याग क्या है, कई सारी मुरलियों में बाबा ने त्याग की अलग अलग परिभाषा दी है और आज की एक ही मुरली में अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा तो कहा कि त्याग अर्थात छोड़ना वस्तु को या चीज को, दूसरा अपनेपन से किनारा कर लेना, तीसरा अधिकार को समाप्त कर देना, चौथा पुराने का त्याग कर देना, पुराने को छोड़ देना अर्थात त्याग, पुराना घर और पुरानी क्या वस्तु सामग्री, यह त्याग है। परंतु शुरुआत में ही कहा कि त्याग की परिभाषा बहुत कोई है, त्याग के प्रकार कुछ गिनाए हैं बाबा ने, हद का बेहद का, संपूर्ण अपूर्ण, अधमरा और मरा, अंतरंग त्याग और बहिरंग त्याग, इसका भी गायन है। एक त्याग है हद का, एक है बेहद का, स्थूल चीजों का त्याग कर देना वो है हद का, सूक्ष्म चीजों का त्याग कर देना, मैंपन का त्याग कर देना वह है सूक्ष्म त्याग, बेहद का त्याग, स्थूल और सूक्ष्म, बेहद और हद, अंतरंग और बहिरंग, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर की वस्तुओं को छोड़ देना, बाहर से विरागी और अंदर से वहिराग, वहिराग ये बाह्य त्याग है, बहिरंग त्याग है, एक है अंतरंग त्याग, बाहर से कुछ ना छोड़ा पर अंदर से संपूर्ण ना सक्त हो चुकी है आत्मा, वह अंतरंग त्याग। और त्याग के कुछ प्रकार आज की मुरली में कहे हैं, तन मन धन और चौथा संबंध, और सारी मुरली की चर्चा हुई है एक त्याग के ऊपर, वो कौन सा, तन। देह भान का त्याग, तन का त्याग अर्थात देह भान का त्याग। बाबा ने स्मरण दिलाया है अपने ही की हुई प्रतिज्ञा की, क्या कहा था हमने उससे, तन भी तेरा, मन भी तेरा और धन भी तेरा, संबंध भी तेरे और संपर्क भी तेरे, जहां बिठाओ जैसे चलाओ, देह सहित देह के सर्व संबंध का त्याग। तो सबसे पहला त्याग, सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला सोपान, सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। उदाहरण दिया किसका? हद के सन्यासी। एक त्याग की और परिभाषा कही है, त्याग अर्थात जो वस्तु किसी और के प्रति यदि त्याग दी है तो फिर संकल्प नहीं वापस लेने का। शास्त्रों में उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र का। विश्वामित्र ने पहले तो धन मांगा और कहा कि धन अब तुम्हारे ही पास रखो यज्ञ का, यज्ञ के लिए, और बाद में उसे एक स्वप्न दिलाया, स्वप्न में जिसमें हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य दान कर दिया विश्वामित्र को, और फिर विश्वामित्र आता है कि मेरा राज्य मुझे दे दो, तुमने दान किया था चाहे स्वप्न में ही क्यों ना किया, और जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखे थे धन वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो सत्यवादी या जो सत्य के पथ के अनुगामी हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं अगर स्वप्न में भी किसी को कुछ दे दे तो वापस नहीं लेती। त्याग की एक परिभाषा बाबा ने ये कही है। संकल्प में भी फिर प्रतिज्ञा अगर की है तो फिर लेने का संकल्प भी नहीं। देह भी तेरा, देहभान भी तेरा, अगर दे दिया है तो अब लेने का संकल्प नहीं। यदि वो सन्यासी क्या करते हैं, घर को छोड़कर जाते हैं, अगर ऐसा बाहर गया हुआ सन्यासी फिर गृहस्थ में आ जाए तो लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उपहास करते हैं। उदाहरण है इतिहास में संत ज्ञानेश्वर के पिता का, गृहस्थ थे परंतु वैराग से चित्त आंदोलित था, कब सन्यास लूं और कब नहीं, और सन्यास ले लिया, परंतु सन्यास लेने के बाद गुरु ने आज्ञा दी फिर से गृहस्थ में जाओ, खुद से नहीं आए, गुरु आज्ञा से आए, परंतु आने के बाद समाज ने उसे मान्यता नहीं दी, बहिष्कृत किया और अंततो गत्वा देहांत प्रायश्चित करना पड़ा। ऐसा वो समाज था। यदि सन्यासी छोड़कर चला जाए कुछ तो वापस नहीं आ सकता। तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम बेहद के त्यागी हो, यदि तुमने कुछ छोड़ा है तो नियम नहीं है कि वापस ले लो। वो सन्यासी घर को छोड़ते और क्या छोड़ते हैं, घर की सामग्री को। यदि त्याग की दूसरी परिभाषा, संपूर्ण त्याग की परिभाषा, एक है अपूर्ण त्याग, एक है संपूर्ण त्याग। संपूर्ण त्याग अर्थात उस पुराने घर की पुरानी सामग्री में भी आकर्षण ना हो। यदि उस पुरानी सामग्री में आकर्षण होता है तो वह अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, संपूर्ण त्याग नहीं। कर्मेंद्रिया ही सामग्री है। यदि एक भी कर्मेंद्रिया आकर्षित करती है तो बाप का बनने नहीं देगी, तो एक स्थिति नहीं हो सकती, तो नंबर वन नहीं बन सकते, ऊंची स्थिति से नीचे गिर जाएंगे, श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं कर सकते। अगर पुरानी वस्तु में आकर्षण है, यदि पुराना बर्तन, पुराना फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन में आकर्षण है तो क्या आ जाएंगे वहां पर, मच्छर, कौन से मच्छर, कौन से मच्छर, काटने वाले सभी मच्छर काटते हैं, कौन से मच्छर, व्यर्थ संकल्प के मच्छर, ईर्ष्या के मच्छर, द्वेष के मच्छर, घृणा के मच्छर, निगेटिविटी के मच्छर, चिंता के मच्छर, संकल्प विकल्प के मच्छर, पाप के मच्छर, लगाव के मच्छर, विकारों के मच्छर, एक भी सामग्री में, एक भी कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो तो यह नहीं समझना एक ही तो कर्मेंद्रिय है, एक है तो सबको खींच कर लाएगी। एक महान योगी कभी अपनी मरणासन्न अवस्था पर था, उसने अपने एक युवा शिष्य को बुलाया और कहा कि सुनो, मेरे बाद तुम उत्तराधिकारी होंगे, मेरी अंतिम शिक्षा सुनो, धर्म की अंतिम शिक्षा। बहुत बड़ा गुरु था, इसके लिए धर्म की वह अंतिम शिक्षा सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए और उस गुरु ने कहा, धर्म का सार यही है कि सब कुछ करना परंतु बिल्ली नहीं पालना। और उसने देह त्याग कर दिया। शिष्य को समझ नहीं आया तो वहीं एक बूढ़ा दूसरा शिष्य था जो कि काफी वृद्ध हो चुका था, उसने कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूं। और उस बूढ़े शिष्य ने एक दूसरी घटना सुनाई कि एक ऐसा ही व्यक्ति था, एक युवक, शादीशुदा, बीवी और बच्चों वाला, परंतु मन में वैराग उत्पन्न हुआ, जीवन क्या है, सत्य क्या है, परम सत्य को पाने की अभिप्सा जागी हृदय में और इसी लक्ष्य से संसार का परित्याग किया और सोचा हिमालय में चला जाऊं। हिमालय पहुंचा तो सोचा गांव के पास रुकना ठीक है, हिमालय में ऊपर जाके क्या करूंगा, भोजन का क्या होगा। गांव में रुका, गांव के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में एक योगी एक सन्यासी आया है, तो गांव वालों ने बड़े प्रेम से उसके लिए एक कुटिया बना कर दी। और वो था योगी था, सन्यासी था, केवल दो ही लंगोट थी उसके पास, यही नियम था। और आनंद से अपना सन्यस्त जीवन व्यतीत करने लगा, परंतु चूहे आ गए झोपड़ी में और चूहे ने लंगोट कतरना चालू कर दी, बहुत मुश्किल हो गई। सन्यासी ने गांव वालों से राय की क्या करना चाहिए। गांव वालों ने कहा, सब जानते हैं कि एक बिल्ली आपको हम दे देते हैं। बहुत ही तर्कपूर्ण बात थी, रैशनल सॉल्यूशन था। और बिल्ली के आते ही सारे चूहे मर गए, सन्यासी बहुत खुश हुआ। भिक्षा मांगने एक बार जाता था, परंतु याद आने लगी बिल्ली की कि उसके लिए दूध, उसका क्या, तो दूध भी मांगने लगा। गांव वालों को दया आई, बेचारा सन्यासी दूध मांगता है। सब ने राय दी कि हम सब आपके लिए गाय खरीद के देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रैशनल सॉल्यूशन था। गाय आ गई, बिल्ली खुश, गाय भी खुश, सन्यासी भी खुश, परंतु गाय को चारा चाहिए था। तो सन्यासी रोज भिक्षा के समय चारा मांगने लगा। गांव वालों को दया आई। अभी अभी गांव की एक स्त्री विधवा हुई थी और उसका कोई नहीं था। गांव वालों ने कहा कि कितना ना अच्छा होता कि ये स्त्री आप यदि सेवा में स्वीकार कर लो, पुण्य भी होगा, स्त्री को भी खुशी होगी। बहुत ही रैशनल सॉल्यूशन था, तर्कपूर्ण, लॉजिकल। स्त्री आ गई, बिल्ली भी खुश, गाय भी खुश, सन्यासी भी खुश। चारा काटना, फिर सोचा खेती भी हो जाए थोड़ी सी, फिर खेती भी आ गई। गांव वालों ने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी है, सॉल्यूशन बहुत रैशनल था, तर्कपूर्ण। शादी भी हो गई, और फिर जब बच्चे हुए तो अलार्म बजा सन्यासी के मन में, यही छोड़कर तो आया था। फिर से मन में वैराग आया, फिर सोचा कि कहीं और चला जाऊं अब सन्यासी बनने के लिए, परंतु वही चूहे और फिर वही बिल्ली और वही दूध और वही गाय और वही चारा और वही स्त्री और वही शादी और फिर वही बच्चे, सर्वत्र चूहे ही चूहे हैं। एक यदि आ जाए तो साथ साथ सब आ जाता है। इसके लिए क्या करना है? रंग रूप, रूप रस गंध, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांच है। आंखें रूप को देखती है, जिह्वा रस शब्द, कान स्पर्श स्किन त्वचा, और गंध नाक। एक भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रह गई तो उसे संपूर्ण त्याग नहीं कहा जाएगा। सब छोड़ना पड़ेगा। मुरली में महावाक्य है, क्या ये मुश्किल है? सब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा है बाबा ने। त्याग तो त्याग अर्थात इस पुराने घर का त्याग और पुराने घर की पुरानी सामग्री का त्याग, ऐसी साधना की आवश्यकता है कि कोई भी कर्मेंद्रिय, कोई भी रस, कोई भी रूप, कोई भी गंध, कोई भी शब्द, कोई भी स्पर्श चित्त को आंदोलित ना करे। अगर एक भी करती है तो एक रस नहीं, एक भी करती है तो नंबर वन नहीं, बाप के बन नहीं सकते। अगर एक भी आकर्षित करती है तो मच्छर, एक भी आकर्षित करती है तो बुद्धि भटकेगी, एक भी आकर्षित करते हैं तो फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। सात बातें गिनाई है बाबा ने। देह के भान का त्याग, विधि क्या है फिर? उसमें पांच विधियां बाबा ने मुरली में सुनाई है, कैसे इस देह के भान का, इस अभिमान का, इस अहंकार का त्याग करे। उसमें एक त्याग की और परिभाषा दी है, त्याग अर्थात मैंपन का त्याग, त्याग अर्थात अहंकार का त्याग। जितना बड़ा अहंकार उतनी अधिक इच्छाएं। दिखाया है इस सब की कहानियों में कि एक लोमड़ी सुबह सुबह निकली बाहर, सुबह का समय था तो उसने अपनी बहुत लंबी परछाई देखी लोमड़ी ने, और देखा कि मैं इतनी बड़ी, आज तो नाश्ते में ऊंट के सिवा पेट नहीं भरेगा, ऊंट तो चाहिए, ऊंट से छोटा और कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं कितनी बड़ी हूं, अगर मैं इतनी बड़ी हूं तो नाश्ते में ब्रेकफास्ट में कैमल ही चाहिए। ढूंढने लगी दिन भर, और जब दोपहर हो गई तो देखा अपनी ही परछाई उसके पैरों तक। फिर सोचने लगी चींटी भी मिल जाए तो बहुत है, जितना बड़ा अहंकार है व्यक्ति का उतनी ही बड़ी इच्छा है। मैं पन का त्याग अर्थात संपूर्ण त्याग। तो त्याग की विधि बाबा ने सुनाई है, किसके त्याग की? देह के भान के त्याग की। पहली विधि है इस देह को क्या समझो? अमानत समझो। अमानत मिली है ये, किस अर्थ मिली है, सेवा अर्थ मिली है, सेवा अर्थ ही लगाना है, इसका भोग करने के लिए नहीं मिली है। ये देह किस लिए मिला है, सेवा अर्थ। एक ही उपयोग है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना भाग्य है, इसके लिए इस देह को दुख भी नहीं देना है, प्रताड़ित भी नहीं करना है। एक तरफ है वो भी एक प्रकार की हिंसा है, एक तो भोग का मार्ग है और दूसरा सन्यासियों ने त्याग किया और इस देह को बहुत सताया। विदेश में संत हुए सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, उसने बहुत बड़े सेंट, रोमन कैथोलिक सेंट, उसने अपने जीवन कहानी में लिखा है, मरणासन्न जब था तब एक वाक्य लिखने को कहा कि वो कहता है अपने ही शरीर से बात करता है, मेरे शरीर अपने संन्यस्त जीवन में, अपने सन्यासी जीवन में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत उपवास करके तुम्हें प्रताड़ित किया है, हे मेरे देह मुझे माफ कर दो। अपने ही देह से माफी मांगी है और अपने देह का ही धन्यवाद किया है कि तेरा बहुत अहोभाव, धन्यवाद तेरा कि तुझ में ही रहते मैंने प्रभु की इतनी भक्ति की, तू स्वस्थ था इसके लिए मैं भक्ति कर पाया। इस देह को अमानत समझना, ये देह मेरी नहीं परंतु क्या है, अमानत मिली है, किस अर्थ, सेवार्थ, और न ही विलासिता के लिए। पहला। दूसरा, क्या समझना इस देह में स्वयं को, मेहमान, गेस्ट, मैं मेहमान हूं इस देह में, मेहमान हूं इस देह में भी, मेहमान हूं और इस दुनिया में भी मेहमान हूं। मेहमान का ममत्व नहीं होता है वस्तुओं में, चीजों में, उसे स्मरण होता है कि उसे कहां जाना है, उसे अतिथि, अतिथि को आतिथ्य और आतिथेय की मर्यादा पता होती है क्या है। निरंतर लक्ष्य होता है, जाना है, जाना है, जाना है। वैसे तुम भी इस संसार में ही नहीं तो इस देह में भी मेहमान हो। तीसरी विधि, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। इस देह में फरिश्ता स्वरूप देखना, ये विधि है इस देह भान से मुक्त होने की। चौथा, शिव बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया है, कौन सा, जैसे मैं इस तन में आता हूं और कहीं फंसता नहीं वैसे फॉलो फादर। दो जगह बाबा ने अपना उदाहरण दिया है, एक तो नम्रचित, जैसे मैं इस तन में नम्रचित हूं वैसे रोब नहीं निर्माण, रूहानी युद्ध, रूहानी स्पिरिचुअल युद्ध। तो जैसे मैं इस तन में हूं, अनासक्त हूं, हूं इसमें परंतु अनअटैच्ड, मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम देशवस्थित, ऐसी अनासक्त तो उसकी अवस्था है। जैसे मैं इस तन में रहता हूं वैसे तुम भी इस तन में रहो। बाबा ने अपना खुद का उदाहरण दिया, जैसे मैं इस तन में फंसता नहीं वैसे तुम भी इस तन में नहीं फंसो। पांचवा, ब्रह्मा का उदाहरण। ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा इस देह को, रथ। तो केवल ब्रह्मा ने समझा, तुमने देखा, तुमने सोचा, बाबा ने पूछा है, ब्रह्मा को देखा क्या समझा रथ, तो क्या केवल ब्रह्मा ने समझा या तुम भी समझते हो, तन मेरा कहते हो या तेरा, या ऐसे कहते हो कि सब कुछ तुम्हारा, आंखें मेरी, क्या पुरानी चीज में लगाओ ये मनमत है या श्रीमत। तो पांच विधि बाबा ने बताई है, सबसे पहली अमानत समझना, दूसरा मेहमान समझना, तीसरा फरिश्ता, इसी देह में मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात ऊपर, लगाव नहीं, मिट्टी से खेलना फरिश्तों को पसंद नहीं, फरिश्तों का रस देह में नहीं है। चौथा शिव बाबा स्वयं, पांचवा ब्रह्मा। एक दूसरा चिंतन का विषय है कि ब्रह्मा ने कौन से त्याग किए। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, ब्रह्मा के नंबर वन बनने का आधार भी क्या था? संपूर्ण त्याग, संपत्ति का त्याग किया, लोक लाज का त्याग किया, दैहिक संबंधों का त्याग किया, स्वयं की कमजोरी का त्याग किया, दूसरों की कमजोरी देखने का त्याग किया। नाम का त्याग किया, मान का त्याग किया, शान का त्याग किया, नींद का त्याग किया, आराम का त्याग किया, सुख का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, हद का त्याग किया, हद की प्राप्ति का त्याग किया। इसलिए ही अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि जहां अभी हम बैठे हैं यह शांति स्तंभ, ये अस्थियां स्थिति को याद दिलाएगी। ब्रह्मा की अस्थियां क्या करेगी तुमको? संपूर्ण स्थिति की याद दिलाएगी। 69 की अव्यक्तवाणी हमें। अगर एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। परंतु बाधा है कुछ कुछ अब त्याग में। वो कौन सी? रावण के 10 शीश। दस शीश वाला रावण नहीं बनो, क्या बनो? शक्ति बनो जिसकी भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 8-16। रावण के शीश की नाएं हैं। ये वही सब है कि उनके आते ही देहभान जागृत होता है। एक को काटो तो दूसरा, दूसरे को काटो तो तीसरा। राम मारते गए परंतु शीश आते गए। दशानन अंत में क्या किया? रायली क्या करो विभीषण से? विभीषण ने कहा, हिट एट द बुलसाय, गलत कर रहे हो। बीज क्या है? नाभि में मारो, अमृत कलश वहां है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किसने, ऐसे, वैसे, तैसे, जैसे, ऐसे, कौन, किसने, कब, किसका, कहां? वैसे वैसे तो रोज अमृत वेला करता हूं परंतु आज थोड़ा, ऐसे तो बहुत अच्छा हूं परंतु कभी कभी थोड़ा। क्यों कहा, किसने कहा, ये मेरे से गुना बिना पूछे किसने किया? ये क्या यहां पर भी ऐसा होता है? ये लोग भी ऐसा करते हैं? दस शीश है, एक कटता है तो दूसरा आता है। दसों ही बातें एक साथ भी आ सकती है तो ये क्या है? दस शीश है। किसी को कह दो कि तुम छोटे और दूसरा बड़ा तो क्या हो जाता है? एक एक नए नए शीश बाहर आते हैं। उल्टा अभिमान, उल्टा शक्ति स्वरूप, दो शब्द बाबा ने कहे हैं। आसुरी शक्ति का प्रभाव उस समय के लिए, उस समय के लिए क्या होता है? आसुरी शक्ति का प्रभाव। ये क्यों, वो क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, ऐसे वैसे तैसे जैसे, प्रश्न ही प्रश्न। बजाय इसके क्या बन जाओ? परिस्थिति में इससे विरोध होगा। क्या बन जाओ? शक्ति रूपा, सर्व भुजाधारी शक्ति। कितनी शक्तियां हैं, कितनी भुजाएं हैं? 16। तो 16 प्रकार के सहयोग तो गिनाने चाहिए सबने। बोलो कौन से सहयोग है? शुभ भावना का सहयोग, यदि हम शुभ भावना रखते हैं तो विश्व को सहयोग है, हमारी पवित्रता सहयोग है, हमारी याद की यात्रा सहयोग है, हमारी दृष्टि सहयोग है, हमारी वृत्ति सहयोग है। उंगली बाबा ने कहा, हमारा ज्ञान योग, हमारी शुद्ध वाइब्रेशन सहयोग है, हमारे पवित्र संकल्प, हमारी सुख और शांति की किरणें सहयोग है, हमारी श्रेष्ठ स्थिति आत्माभिमानी स्थिति सहयोग है, हमारी रचनात्मकता सहयोग है, हमारा श्रेष्ठ जीवन सहयोग है, हमारा अखंड ब्रह्मचर्य सहयोग है, हमारी धारणाएं सहयोग है, हमारे गुण सहयोग है, हमारी शक्तियां सहयोग है, हमारे श्रृंगार रूहानी सहयोग है, समय सहयोग है, हमारा ब्रह्म भोजन भी सहयोग है, उमंग उत्साह सहयोग है, 16 से ज्यादा है, खुशी सहयोग है, हमारा निश्चिंत जीवन सहयोग है, आत्माओं के टेंशन को खींच लेता है। कभी मुरलियों में बाबा ने कहा कि जैसे वो क्या होता है, वो वैक्यूम क्लीनर होता है, वो कैसे खींच लेता है, वैसे आत्माओं का स्ट्रेस टेंशन खींच लो। ये थे त्याग में बाधा, और बनना क्या है, सहयोगी। सहयोग करो तो सहयोग मिलेगा, पदम गुना। फिर है ये त्याग करने से प्राप्ति क्या है, एक बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहा है। पहला कहा था त्याग की परिभाषा, फिर कहा था त्याग के प्रकार, फिर कहा था किन चीजों का त्याग करना है उसकी विधि, और फिर बाधा, और फिर सहयोग, और है इन त्याग का परिणाम क्या है। परिणाम है डबल लाइट। इसका अर्थ है कि जब जब हम देहभान में आए हैं तब तब हम भारी हुए हैं, सबका अनुभव है, सबका ये अनुभव है। जब जब मन भारी है, या तो ऐसा कहो तब तब सूक्ष्म में अंदर ही अंदर देहभान है। तो जब भारीपन है अर्थात देहभान है, अर्थात श्रीमत नहीं मनमत है, अर्थात रावण संप्रदाय है, जिस्म जिस्म को देखता है, तो ये क्या श्रीमत है। परिणाम है डबल लाइट स्थिति। वैसे तो एक है स्थूल त्याग, एक है सूक्ष्म त्याग। बाबा जिस त्याग की बातें कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और यदि देखा जाए तो केवल वस्तुओं के त्यागने से त्याग फलित नहीं होता। बाहरी त्याग जो है, बहिरंग त्याग जो है, परंतु फिर वो भी आवश्यक है। तो इस क्लास में हम ऐसी चार और बातें कहेंगे जो कि हो सकता है हृदय को आघात करे, हृदय किसी किसी का विदीर्ण हो जाए, परंतु जरूरी है बीच बीच में। चार बातें, और इन चार बातों में फिर पांच पांच बातें और दो एडिशन। सबसे पहले तो कुछ आदतें, सबसे पहले तो कुछ आदतों का त्याग करना है। जो लिख सकते हैं वो लिख ले। सबसे पहली आदत, अमृत वेले के बाद सोना। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, बोलने के सुनते सुनते ही संकल्प कर लो और धारण कर लो। जो त्याग करता है तुरंत करता है, धीरे धीरे नहीं, झटकू तुरंत छोड़ दिया वो छोड़ दिया। श्रेष्ठ मिलन भगवान के साथ, अशरीरी अवस्था, प्रभु से सर्व संबंधों की प्राप्ति और उसके बाद में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की बाहों में की आवाज आती है। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर बिस्तर पुकारता है। परमात्मा शरण की बाहों में गूंज रहा शिव का संदेश, वहीं से आवाज आने लगता है कि कब अमृत वेला पूरा हो, कब गीत बजे पौने पांच का और शांति की अनुभूति। निर्संकल्प स्थिति, आज का काम पूरा हुआ अमृत वेले का, एक काम पूरा हुआ दूसरा अभी थोड़ी देर बाद है, उससे पहले महत्वपूर्ण काम कर ले। ये जो बातें हम बता रहे हैं ऊपर ऊपर की बातें हैं, बीज है देहभान, इसको भूलना नहीं है। जैसे एक व्यक्ति था, उसके पैर में इतना दर्द था, चिल्लाता था, एक डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा कि क्या करूं। डॉक्टर ने कहा मैं बताता हूं क्या करना है, ये दर्द जो है अपेंडिक्स का दर्द है, यहां से पेन नीचे जा रहा है, रेफर्ड पेन, तुम्हारा अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। वो कहता है अच्छा निकालो, अपेंडिक्स तो निकल जाता है परंतु दर्द जो का त्यों। दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा डॉक्टर जैसे सभी डॉक्टर करते हैं कि जिस डॉक्टर ने पहले देखा पहले उसको बहुत भरपूर गालियां दी कि कितना मूर्ख था वो, अब मैं तुमको ठीक करता हूं नियम प्रमाण। उसने कहा कि ये दर्द टॉन्सिल की वजह से है, वहीं से दर्द नीचे जा रहा है। उसने कहा निकालो, परंतु दर्द जो का त्यो तीसरे डॉक्टर के पास कहा कि दोनों ही मूर्ख थे, मुझे पता है ये दांत का जो दर्द है, जब तक दांत नहीं निकलेगा तब तक ये दर्द जाएगा नहीं, दांत निकालना पड़ता। दांत भी निकल गया परंतु दर्द तो वैसा ही। परंतु लोगों ने एक दिन देखा कि ये व्यक्ति अब तो ऐसे चलने लगा था झुकझुक के लकड़ी का सहारा लेके, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि लकड़ी को छोड़ दिया और सीधा खड़ा हुआ और गुनगुनाता हुआ फिल्मी धुन जा रहा है। लोगों ने पूछा ऐसा कौन सा चिकित्सक तुमको मिल गया, कैसे तुम्हारा ये ठीक हुआ। उसने कहा कि प्रॉब्लम तो कुछ और ही था, जूते में कील थी। ईसीजी में कैसे आ सकती है। एक बात को भूलना नहीं, बाकी सारे त्याग बाहर के हैं, बीज जो है वो देहभान है, काम उस पर करना है। विधि है पांच जो बताई, तो सबसे पहला है अमृत वेले के बाद सीधा की कमाई चट करना है। वो समय है चिंतन का, अध्ययन का, मनन का, स्वयं से बात करने का, प्लानिंग का, सोने का नहीं। दूसरा भोजन के समय बात करना, क्या खा रहे हैं, किसकी याद में खा रहे हैं, मौन में श्रेष्ठ चिंतन के साथ, श्रेष्ठ स्वमान के साथ दृष्टि देते हुए परमात्मा याद में स्वीकार कर। तीसरा पर्पजलेस चिटचट, व्यर्थ की बातें, झरमोई झगमोई की बातें, किसने क्या किया, कौन क्या करता है, कौन किसके साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। चौथा पर्पजलेस शॉपिंग, खरीदना नहीं है परंतु आदत बनी है, जाओ और विंडो शॉपिंग करो, अगर कुछ मिल गया तो ले लेंगे। और पांचवी पर्पजलेस सर्फिंग, सर्फिंग अर्थात माताओं को पता है, नेट पे बैठ जाओ, क्या ढूंढना है पता नहीं, एक क्लिक नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक तक पहुंचा सकता है। पर्पजलेस सर्फिंग पांचवा, ये आदतें बन गई है। बाबा ने रूहानी युद्ध कहा है, युद्ध अर्थात जोश वाले नहीं, नम्रचित्त। युत अर्थात रूहानियत की शक्ति वाले, अपनी शक्ति को, अपने तपोबल को व्यर्थ गंवाने वाले नहीं विकारों में। कितने ही कुमारों को एक माउस के क्लिक ने ब्राह्मण से शूद्र कुमार बना दिया है, ब्राह्मण कुमार ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बनने के लिए एरो के ऊपर एक ही कैटलिस्ट है, नेट, इधर से उधर की यात्रा। पांच बातें हो गई। दूसरी पांच बातें हैं भोजन से संबंधित। पहला, चाय और कॉफी इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, उत्तेजित करता है चित्त को। इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज एंड आई से इन द कप ऑफ टी, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज एंड आई से इन द कप ऑफ टी। चाय सुबह पी, दोपहर को पी, रात को पी, पीते ही रहते हैं। कम कर देना है, हो सके तो छोड़ दो तो बहुत अच्छा। परंतु तर्क बहुत सारे, नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, सुस्ती नहीं आती, नहीं तो सुस्ती आती है, परंतु ये सब बहाने हैं। वो भी एक अवलंबन है, एक आधार है हद का। दूसरा, बहुत तेल, हर चीज को तेल से गुजारो। ब्राह्मण अर्थात तेल के साम्राज्य में जीना नहीं है। हर चीज को तेल से गुजारो, हर चीज को फ्राई, हर चीज को छोक। तीसरा, चीनी, शुगर एडिक्शन। और फिर एक दिन पता चलता है डायबिटीज। अगला है नमक, हर चीज में बहुत नमक, हर चीज में नमक उत्तेजना करने वाला है। एक भी कर्मेंद्रिय यदि धोखा दे तो उसे संपूर्ण त्याग नहीं करेंगे। जहां रसेंद्रिय ही वश में नहीं, वहां जनेंद्रिय वश में कैसे हो सकते हैं। कितने हुए, चार, और चौथा, पांचवा, मिर्च तीखा। जगदीश भाई ने किताब में लिखा है, ऐसे निकलते भोजन करके करते हुए भोजन पूरा होता है। कहते हैं थोड़ा सा लिया, थोड़ा थोड़ा करके हथौड़ा लगता है। ये पांच भोजन की बातें। अगली है सात बातें और पहनने की बातें। सभी तो करते ही है ना, नहीं करते हैं, परंतु फिर भी बता रहे हैं। सबसे पहला, सेंट और परफ्यूम। इतना सेंट लगा के बाबा के कमरे में बैठते हैं कि जो योग कर रहे हैं सीधा सूक्ष्म वतन से नीचे पहुंच जाते हैं। कोई तो परमधाम से नीचे गिर जाता है। वो सुगंध ऐसी आ जाती है कि पता चलता है कोई तो महान योगी अंदर आया है। दूसरा, पाउडर और क्रीम। बाबा ने कहा तुम्हारा ये श्रृंगार नहीं है। तीसरा, नेल पॉलिश। बहने थोड़ा ज्यादा कर दिए ये। चौथा, मेहंदी और टैटू। पांचवा, कलर्ड क्लोथ्स। क्या रंगीन अभी भी खींचता है? आप कहोगे मुरलियों में तो आता है, बाबा कहता है, साकार महावाक्य, किसने कहा तुमसे कि सफेद पहनो? कोई भी कपड़े पहन सकते हो, साकार मुरलियों में आता है ये, सेवा करो। परंतु वह रंगीन की दुनिया जिसने छोड़ दी, अब क्या उसमें मोह और क्या उसमें आकर्षण, जब यही जीवन है और यही सब कुछ है। तो क्यों फिर कभी ये और कभी वो और कभी वो और कभी वो। कभी ये तो कभी वो खींचता है तो कभी वो खींचता है। फिर प्रश्न उठता है क्या करे, त्रिशंकु सी अवस्था, टू बी और नॉट टू बी की अवस्था। बाबा ने कहा अधमरे हो या पूरे मरे हो, या लंबी लंबी श्वास लेने वाले अधमरे हो, क्या हो? मराठी में एक कवि है जो कहता है, एक माजा सवाल लाख मोलाचा, मेरा एक ही सवाल है लाख मोल का, हे करावे कि ते 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 करावे कि ते, ये करूं या वो 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 करूं या वो। ऐसी अवस्था तो नहीं है, जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, अब क्या देखना उस रंगीन दुनिया को। अगला है हेयर डाई, आत्मा जवान हो जाए, आत्मा में बल आ जाए, वो बाहरी श्रृंगार से नहीं और नहीं बाहर के श्रृंगार से जो सत्य है वो छिपाया भी जा सकता है, कभी ना कभी तो प्रकट होगा कि नहीं। अगले कुछ खेल है, पांच प्रकार के खेल, छह हो गए, एक बचा है, छह हो गए, सातवां कौन सा हो सकता है? ज्वेलरी, राइट, समटाइम्स मोर क्लोथ्स, वो क्लोथ्स में आ गया ज्वेलरी, हाथों में कई सारी अंगूठियां, अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी में भी माया, तो सातवां है गहने, छोड़ दिया है वो संसार तो गहने क्यों आकर्षित करते हैं। फिर है कुछ खेल, खेल का त्याग, पहला खेल है क्ले गेम, क्ले अर्थात मिट्टी, मिट्टी से खेलना, इस देह को सुख को ही सब कुछ समझना, इसे कहा जाता है क्ले गेम, सॉइल गेम। बाबा ने कहा स्टॉप दिस गेम। दूसरा है डॉल गेम, डॉल अर्थात गुड़िया, रूसना रूठना नाराज होना, अभी अभी खुश अभी अभी दुखी, अभी अभी ये तो अभी अभी वो, छोटी छोटी चीजों में अफेक्ट हो जाना, सेंसिटिव नेचर, ये डॉल गेम है। तीसरा है स्नेक एंड लैडर, अभी अभी ऊंची स्थिति और फिर अहंकार और फिर सीधा जीरो 99 से, सांप सीढ़ी, स्टॉप दिस गेम। अगला है बॉक्सिंग, कब तक बॉक्सिंग करते रहेंगे माया से, क्यों नहीं उसे हमेशा के लिए हरा देते। आज की मुरली में कहा है समर्थ आत्मा अर्थात माया को चैलेंज करने वाले और विजय प्राप्त करने वाले, बाप के संग रहने वाले, सर्वशक्तिवान की संतान अर्थात मास्टर, सर्वशक्तिवान परिस्थितियों को पार करने वाले, जैसे एरोप्लेन जाता है तो पहाड़ और समुन्दर नीचे रह जाते हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, मेहनत नहीं, समर्थ आत्मा है। कब तक ये बॉक्सिंग रेसलिंग करते रहेंगे? कितने खेल हुए? और पांचवा खेल टग ऑफ वार, एक खेल होता है मुरलियों में, बाबा याद करते हैं, रस्सी खींच, खेल तो बहुत सारे हैं और पर हम इतने आज गिना रहे। तो कुछ आदतें थी, कुछ भोजन की चीजें थी, कुछ पहनने की चीजें थी और कुछ खेल थे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमें लगता है कि हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा है, तो तुरंत संकल्प करके उसे छोड़ देना, त्याग कर देना, यही विधि है। त्याग अर्थात ये नहीं कि सोच सोच के जीवन बीत जाए। जब पता चल जाए व्यर्थ है कोई चीज, व्यर्थता का पता करो, व्यर्थता पता चल गई तो चीज छूट जाती है। जैसे एक चील है, वो उड़ रही है आकाश में, उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा है और उस चील के पीछे हजारों चील और कौवे भाग रहे हैं। जहां वो चील जा रही है पीछे पीछे चील और बाकी कौवे। उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, एक दूसरी चील ने मांस के टुकड़े को पकड़ा, अब बाकी सारी चील और बाकी सारे कौवे उस नई चील के पीछे जाने लगे और जो पहली चील थी वो देखने लगी। अवधूत दत्तात्रेय ने उसे प्रणाम किया और कहा कि तुम मेरी गुरु हो, तुमसे मैंने ये सीखा है कि जो चीज को पकड़कर परेशान किया हो जाते हो उसको छोड़ दो। जैसे उस चील ने छोड़ा, वो अब निश्चिंत होकर देखने लगी खेल, कैसे सारे कौवे और दूसरी चीले उस नई चील का पीछा कर रहे हैं। जब तक वो पकड़े थे तब तक परेशानी थी। परेशान तुम होते हो, तुम चाहो तो बाप तुम्हें हजार बर्तन दे सकते हैं पर परेशान तुम होंगे। तो ऐसी ये आज की मुरली थी। ऐसे सदा सहयोगी मूर्त आत्माओं को, ऐसे सदा त्याग से श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे हर कदम में फॉलो फादर करने वाले सदा स्वयं को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा बेहद के संन्यास करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। एक योग की कमेंट्री है, एक 5 मिनट के लिए सुनेंगे फिर जाएंगे। हमारे कमलेश भाई ने आज की मुरली पर यह कमेंट्री बनाई है।
ओम शांति। मैं भृगुटी सिंहासन पर विराजमान त्यागमूर्त आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों का राजा, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे आकर्षित कर नहीं सकते। मैं सर्वस्व त्यागी आत्मा इस पुरानी देह रूपी घर के भान से धीरे धीरे बहुत परे होती जा रही। मैं संकल्प द्वारा अपनी देह का भाव प्यारे बाप दादा को समर्पित करती दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ यह शरीर रूपी रथ बाप को दे दिया। बाप दादा के पदम गुनाद दुआ और मदद के कारण मेरा अपनी देह के भान से अपनापन और अधिकार समाप्त होता जा रहा है। इसी त्याग द्वारा मुझे श्रेष्ठ भाग्य डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव हो रहा है। दैविक आकर्षणों से आजाद अब मैं आत्मा उड़ता पंछी बन इस पुराने देह रूपी घर को छोड़कर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा हूं। और मैं आत्मा नीले गगन से होकर सफेद प्रकाश की ओर जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन जहां बाप दादा दोनों बाहें फैलाकर मेरा वेलकम कर रहे हैं। बाप दादा बोले आओ मेरे कदम कदम में फालो फादर करने वाले सदा सहयोगी मूर्त बच्चे आओ। मैं पूरी मर्जिवा बनी हूँ फरिश्ता स्वरूप आत्मा बाप दादा की भुजाओं में समा गई। फिर बाबा बोले बच्चे जिन भुजाओं में तुम हो जानते हो वह किसकी निशानी है? शक्तियां और संयोग की निशानी। वैसे माया रावण के 10 सिर वाली आत्मा छोटी छोटी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बने क्यों क्या ऐसे वैसे के सिर द्वारा अपना उल्टा अभिमान प्रत्यक्ष करती रही और शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में हर कार्य में सहयोगी होंगे। फिर बाप दादा ने मुझे प्यार करते हुए पूछा बच्चे सेवा कैसे करते हो? जवानी के जोश में कभी रोग तो नहीं आता? रूहानी हथा सदा रुहाब में रहने वाले सदानंद जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं ऐसे फालो फादर जरा भी सेवा में रोग आया तो सेवा समाप्त हो जाती है। प्यारे बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले बच्चे ऐसे ही बाप की समीपता के अनुभव द्वारा समान साथी हो स्वप्न में भी विजयी हो सदा माया जीत हो ऐसे ही सदा बाप के संग में रहने वाला कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। अब मैं आत्मा बाप दादा द्वारा सेवा जो शरीर मिला उसमें प्रवेश कर रही हूं। ओम